वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी।
श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 21।
ना भजते कुमनीषिणां सह हिज्ञां हरि अधना आत्मधना प्रियः रसजना श्रुता धना कुला कर्मणां मदैः ये विदधाति पापम् अकिंचनेषु सतो
सत्सो।
न भजति कुमनीषिणां सहिज्ञां न भजति कुमनीषिणां सहिज्ञां हरेरदनात्मधनप्रियो रसजना हरेरदनात्मजनो प्रिय रसजना श्रुतधनकुलकर्मणां मदैर्ये श्रुतधनकुलकर्मणां मदैर्ये विदधाति पापम् अकिञ्चनेषु सत्सु विदधाति पापम् अकिञ्चनेषु सत्सु।
प्रिय रसज्ञ जीवन के सार को स्वीकार करने वाले रसिक श्रुत शिक्षा धन संपत्ति कुल वंश कर्मणाम तथा कर्मों का मदेहि गर्व से ये जो विदधाति संपन्न करता है पापम तिरस्कार अकिंचनेशु निर्धन सत्सु भक्तों का। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी और श्री प्रभुपाद की। भगवान उन भक्तों को अत्यंत प्रिय है जिनके पास कोई धन नहीं है किंतु जो भगवत भक्ति को ही अपना जीवन धन मानकर प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह भगवान ऐसे भक्तों के भक्ति निस्संदेह भगवान ऐसे भक्तों के भक्ति क्यों स्वीकार करते हैं भक्ति कार्यों को स्वीकार करते हैं जो लोग अपनी शिक्षा संपत्ति कुलीनता और कर्म से मद से फूले रहते हैं, वे कभी भी भगवान का उपास वे कभी कभी भक्तों का उपहास करते हैं। यदि ऐसे लोग भगवान की पूजा करते भी हैं तो वे उसे स्वीकार नहीं करते। तात्पर्य, भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर आश्रित है, वे भक्तों का अर्पण तथा स्वीकार नहीं अभक्तों का अर्पण स्वीकार नहीं करते। शुद्ध भक्त वह है जो अनुभव करता है कि जिसके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है। भक्त सदैव भगवान की भक्ति रूपी धन से प्रसन्न रहता है। भक्त कभी भी भौतिक दृष्टि से निर्धन प्रतीत होता है, किंतु आध्यात्मिक रूप से उन्नत तथा संपन्न होने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे भक्त परिवार, समाज, मित्रता, संतान आदि के प्रति आसक्ति से मुक्त रहते हैं। वे इन समस्त भौतिक वस्तुओं के प्रेम को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सदैव प्रसन्न रहते हैं। भगवान भी अपने भक्त की स्थिति को समझते हैं। यदि कोई शुद्ध भक्त का उपहास करता है तो वह भगवान द्वारा कभी अपनाया नहीं जाता। दूसरे शब्दों में, यदि कोई शुद्ध भक्त का अपमान करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। इतिहास में इसका उल्लेख अनेक उदाहरण मिलते हैं। परम योगी दूर्वासा मुनि ने परम भक्त अम्बरीश महाराज का अपमान किया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दूर्वासा को दंड दिया। यद्यपि वह परम योगी भगवान के पास गया, किंतु उसे क्षमा नहीं मिला। जो लोग मोक्ष के पथ पर हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए कि शुद्ध भक्त का कभी अपमान ना करे। ओम अज्ञात मिरांदस्य ज्ञानांजलतोर्पंगुर मा मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदां भोजो राधा मदन मोहन। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। आज राधाष्टमी के शुभ अवसर पर आज ये भागवतम का श्लोक हम चर्चा करेंगे। जब हम भागवतम का क्लास आज का हमको दिया गया था, तो हमने सोचा कि क्या भागवतम के श्लोक के ऊपर लिया जाए या राधाष्टमी के ऊपर लिया जाए। तो हमको तो मालूम था कि राधाष्टमी के ऊपर चर्चा करना, तो हमारे पास कोई योग्यता तो है नहीं, तो भागवतम के ऊपर थोड़ा बहुत तो हम अंदाज लगा सकते हैं, कुछ तो बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि भागवतम के श्लोक के ऊपर लिया जाए। जब हम भागवतम श्लोक को पढ़ा, इस श्लोक को, तो स्वाभाविक तरीके से हमारे मन में ये सारा श्लोक राधाष्टमी के ही ऊपर ही चर्चा है, एक प्रकार देखा जाए स्पष्ट रूप में, क्योंकि इस श्लोक के तात्पर्य के पहले लाइन में है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज डिपेंडेंट ऑन हिज प्योर डिवोटीज। भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो अपने भक्तों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो असलियत में यही है पूरा राधाष्टमी का चर्चा। तो इन श्लोक को ऊपर चर्चा करते हुए थोड़ा बहुत राधाष्टमी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो न भजति कुमनीषिणाम सैज्जाम, न भजति ना मतलब नहीं, भजती मतलब स्वीकार करते हैं। हाँ क्या, किसको स्वीकार नहीं करते? इज्जाम, इज्जा मतलब वर्शिप यानी सेवा पूजा। ऐसे बोला जाता है कि भगवान, भगवान क्या बताते हैं भगवद्गीता में, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। हाँ सभी लोग बोलते हैं कि आप मुझे पूजा करो, मेरा सेवा करो, मेरा प्रणाम करो, मैं उसको स्वीकार करूँगा। लेकिन इधर बताते हैं कि न भजति इज्जाम, मैं पूजा को स्वीकार नहीं करूँगा। क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? क्योंकि ये पूजा के पीछे कुमनीषी नाम, अगर कोई कलमश है, ये जो कलमश के साथ युक्त जो अर्पण है, जो पूजा है, ये मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। इससे हमको पता लगता है इस भौतिक संसार में भी, साधारण व्यवहार में भी, हम क्या देते हो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या बोलते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे देते हैं और कैसे बोलते हैं वो महत्वपूर्ण है। इट इज़ नॉट व्हाट यू गिव दैट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट व्हाट यू स्पीक दैट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ हाउ यू स्पीक एंड हाउ यू गिव दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर किसी को आप प्रशंसा भी करेंगे, अगर वो सही तरीके से नहीं करेंगे, वो सोचेगा मुझे डांट रहा है। अगर किसी को आप डांट भी देंगे, अगर वो आप सही तरीके से करेंगे या अच्छी भाषा से करेंगे, तो वो डांट भी उसको अच्छा लगता है। तो ये बात को इधर स्पष्ट रूप में भगवान बता रहे हैं कि भगवद्गीता में एक श्लोक के तुरंत इवन नए भक्तों के मन में भी आ जाता है जैसे ये श्लोक पढ़ेंगे, तो वो क्या है वो नहीं 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 भगवान पत्रम पुष्पम फलम त्योयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मनः। इस श्लोक में श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, असलियत में मुझे पत्र नहीं चाहिए, भगवान को पत्र नहीं चाहिए, फूल नहीं चाहिए, भले ही बोल रहे पत्रम पुष्पम फलम त्योयम ये प्रदान करो, भगवान को ना पत्र चाहिए, ना पुष्प चाहिए, ना जल चाहिए, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से आ रहा है। लेकिन अस्तित्व में उनको चाहिए क्या? भक्ति। इसलिए इस श्लोक में तीन जगह भक्ति का उल्लेखन किया गया, ये शब्द बार बार आता है, पत्रम पुष्पम फलम चोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अष्टामी प्रेतात्मनः। बताया गया कि जो ये चीज़ों को भक्ति से, भक्ति भावना से जो अर्पण करता है और मैं उसको स्वीकार करता हूँ, भगवान इस प्रकार नहीं बोलते, बोलते कि इन चीज़ों को जो भक्ति भावना से अर्पण करता है, मैं वो चीज़ जो भक्ति के द्वारा अर्पण किया गया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो बार बार भक्ति भक्ति बताते हुए इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप में बता रहे कि मुझे वस्तुएँ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे भक्ति चाहिए, आई वॉन्ट लव। हाँ मैं भगवान असलियत में प्रेम के पुजारी है या प्रेम के भिखारी है, प्रेम के भिक्षुक है। तो न भजति कुमनीषी नाम सैज्जाम, हम ये उदाहरण के द्वारा हम जानते हैं सभी लोग इस उदाहरण को। जब भगवान आए हस्तिनापुर में, तब दुर्योधन बहुत सुंदर व्यवस्था किया था, बहुत अच्छा नाना प्रकार का व्यंजन बनाया था, सब कुछ बनाया था, लेकिन भगवान दुर्योधन के पास नहीं गए, कहाँ गए? विदुर के पास गए। जब विदुरानी के घर में अचानक पहुंच गए, कोई निमंत्रण तो दिया नहीं था, उनके पास उतना घर उतना धनी भी नहीं थे, तो जैसे गए वो घबरा गए। सहस्र संभ्रम सेव्यमानम, ये संभ्रम था की वजह से उन्होंने क्या किया, उनके घर में और कुछ तो था नहीं, केले का एक केला लेके वो छिलका निकाल के भगवान को दिया। अस्तित्व में क्या किया, छिलका को फेंक के केला दिया जाता है, उन्होंने क्या किया विदुरानी ने, केले को फेंक दिया और छिलका दिया, तो भगवान ने बहुत अच्छी तरह से बहुत स्वादिष्ट आस्वादन कर रहे थे। तो ये भक्ति है। हाँ जब कोई चीज़ भक्ति भावना से अर्पण किया जाता है, भक्ति से उत्पन्न हुआ जो वैराग्य, और वैराग्य और भक्ति को साथ में युक्त जो चीज़ है वो भगवान अर्पण स्वीकार करते हैं। क्योंकि इस भक्ति के साथ वैराग्य को इसलिए जोड़ना पड़ रहा है आज के श्लोक में, क्योंकि इस श्लोक में वैराग्य का भी वर्णन है, क्योंकि दूसरे श्लोक में इसका दूसरे लाइन में इसका वर्णन आता है। हरिर अधन आत्मदन प्रियोजन प्रियोजना, हरिर आत्मदन, हरिर अधन आत्मधन, ये अधन जो भक्त लोग अधन जिनके पास कुछ भी नहीं है। और इधर हम और एक उदाहरण को जान सकते हैं कि जहाँ भगवान जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट लीला कर रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी हसियत में श्री चैतन्य महाप्रभु अगर चाहे तो किसी के घर में भिक्षा मांग सकते हैं, इतने सारे हजारों भक्त लोग आके उनको अलग सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते थे। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बार बार पूछ रहे थे सुरु दामोदर से, सुरु दामोदर बार बार बता रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी अभी भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया है, अभी केवल रात को जो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद मिलता है उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। अभी कुछ समय के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछे कि रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे, तो बताया जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी अभी जो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो रात को जो बचा हुआ मिल जाता है वो भी नहीं खा रहे, अभी क्या कर रहे वो, अभी हो गया जो किचन है जगन्नाथ जी का किचन है रसोई घर है उधर का एक बड़ा गटर है जो सब गिरा हुआ सब गंदा चीज़ जो है वो सब बाहर निकलता है, और बाहर निकल के एक बहुत बड़ा तालाब है उधर पड़ के सड़ जाता है, उधर बहुत सारे गाय भी आके खाने के लिए आते हैं, वो गाय क्या करते हैं उनको चावल दाना जो भी सड़ा हुआ चीज़ें वो खा के और उसके मुंह से थूक देते हैं क्योंकि वो भी इतना गंदा बास आ रहा है। तो जानवरों को भी जो लायक नहीं है ऐसे जो चीज़ है उसको रघुनाथ दास गोस्वामी लेके उसको धो के वो आस्वादन कर रहे, तब तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मुझे तुरंत जाना है। श्री चैतन्य महाप्रभु जाके जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी उसको खा रहे थे तो वो जो जगन्नाथ जी का रसोई से निकला हुआ जो सड़ा हुआ चावल के जो दाने वो खा रहे थे उसी समय एक सोने का हाथ आके उनको रघुनाथ दास को हाथ को पकड़ लेता है, ज़बरदस्ती पकड़ के उसके हाथ से खींच के तुरंत मुंह में डालते हुए रहते। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि नहीं ये हार जो है आपके लायक नहीं है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम चुप रहो, वो आस्वादन करते हैं करके बोलते हैं कि रघुनाथ तुम बहुत बड़े छोर हो, इतना स्वादिष्ट व्यंजन को तो अकेले अकेले बैठ के चख रहे हो। असलियत में चैतन्य महाप्रभु क्या आस्वादन कर रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर को जो वैराग्य है भक्ति से उत्पन्न हुआ वैराग्य है उसको आस्वादन कर रहे थे। तो ये स्पष्ट रूप में हमको मालूम पड़ता है कि अलग अलग शास्त्रों में कहीं भी आप जाओ अलग अलग उदाहरणों के द्वारा सारे जगह भगवान इस बात को घोषणा करते हैं कि मैं भक्तों के अंदर हृदय का जो भक्ति है उसको स्वीकार करता हूँ। असियत में वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, किस प्रकार मुझे अर्पण करते हैं वो महत्वपूर्ण है। अदन आत्मजनो प्रियो रसज्ञा, अदन आत्मजनो आत्मधना, तो इधर भक्तों का एक विशेष गुण वर्णन किया गया है वो है अधन आत्मधना। ये बहुत महत्वपूर्ण दो शब्द है, अधना यानी भगवान की भक्तों के पास अधना यानी धन नहीं है, तो धन नहीं है तो कैसे जी रहे वो लोग, क्योंकि उनके पास आत्मधना। इधर आत्मा शब्द है भगवान श्री कृष्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके संबंध से जुड़ा हुआ भक्ति का जो धन है उसको आत्मधना, ये इसको आत्मधन बोला जाता है। जिनके पास भक्ति नामक जो धन है वो बाकी सब जो सदा तथाकथित भौतिक धन है उसको धन करके मानते ही नहीं है, तो इसलिए अधना अधना आत्मजन आत्मधनो रसज्ञ। ये श्लोक में और एक शब्द आया है, यह है रसज्ञ। रसज्ञ मतलब जो भगवान के साथ अपना संबंध को जानते हैं, हु एक्सेप्ट द एसेंस ऑफ लाइफ। रसो वै सहा, भगवान को उपनिषद इस प्रकार वर्णन करते हैं रसो वै सहा, जो रस का आगार है। यही उपनिषद ही नहीं बल्कि भक्ति रसामृत सिंधु का शुरुआत में ही इस प्रकार वर्णन किया है, कौन है भगवान, भगवान का वर्णन किया जाता है कि अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत जो सारे रसों के आगार है। तो इधर प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये रस होता क्या है, रस तो हमने बहुत प्रकार का रस है, आम का रस है उसका रस है, लेकिन ये कैसा रस है, भगवान रस के मूर्तिमान स्वरूप है, मतलब कौन से फ्रूट के कौन से फल के रस है असलियत में ये भक्तों का भक्ति का रस का मूर्तिमान स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। असलियत में रस का परिभाषा दिया जाता है कि भगवान और भक्त के बीच में ऐसे उत्पन्न हुआ संबंध से या उन दोनों के बीच का संबंध से उत्पन्न हुआ जो आनंद है उसको रस बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड रसा। और रसज्ञा, और रसज्ञा मतलब परिपूर्ण है, जो रस से परिपूर्ण है, क्योंकि ये अधना जो भक्ति का रस को आस्वादन कर रहे हैं और भक्ति का रस को जो असली धन मान के है मानते हुए अपना जीवन व्यापन करते हैं, वैसे लोगों को भगवान उनके आदीन हो जाते हैं, उनके ऊपर वो अपना पूरा निर्भर करते हैं। ये बात इधर स्पष्ट रूप में बताया गया है। और आगे दो लाइन में बहुत महत्वपूर्ण और एक बात बताया गया है। पहला लाइन में हमको मालूम पड़ता है कि भगवान जो कुमनीषी नाम जिनके हृदय में कलमश है वैसे लोगों का पूजा को स्वीकार नहीं करते, वैसे लोगों का जो ऑफरिंग्स है वो स्वीकार नहीं करते। और दूसरी बात, दूसरा लाइन में क्या बताया जाता है कि वो किन लोगों का ऑफरिंग स्वीकार करते हैं, वो ऐसे भक्तों का जो अधना आत्मधना, जो वास्तविकता है भक्ति को वास्तविक धन मान के जीते हैं, वैसे लोगों का जो अर्पण है वो स्वीकार करते हैं, इतना हद तक उनका आदीन हो जाते हैं। और तीसरे लाइन में वर्णन किया गया ये कुमनीषी नाम होता क्या है। कुमनीषी ये गंदा व्यक्ति है, इसका हृदय कलमश से भरा हुआ है, ये कलमश है क्या, ये कलमश का वर्णन किया गया है। क्या क्या वो कलमश, श्रुता, सबसे पहला कलमश है बहुत बड़ा विद्या। भक्तिनोद ठाकुर बताते हैं कि ये जड़ विद्या मायार वैभव, ये जड़ विद्या जो है मैं PhD हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये असलियत में क्या है, माया का वैभव है। जो सब लोग गर्वित हो जाते हैं इससे, हमने इतना पढ़ाई किया है, तुमसे ज़्यादा मुझे नंबर आया है, तो इस प्रकार की जो भावना है ये अस्तित्व में माया का वैभव है। माया अपना वैभव को कैसे प्रकट करता है, इन विद्या के, जड़ विद्या के द्वारा प्रकट करता है। धना और धन, अस्तित्व में कुछ लोग गर्वित होता है धनी से, कुछ लोग विद्या से गर्वित हो जाते हैं, धन भी व्यक्ति के अंदर अहंकार को उत्पन्न करता है। जैसे कुंती महारानी इस बात को बताती है, क्या बताती है कि जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीविर येदमान मदपुमान नैवार्यत यभिदातुम मै त्वाम अकिंचन गोचरम। इस श्लोक में अकिंचन शब्द आया है, इसी शब्द को कुंती महारानी उच्चारण करती है कि जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिर येदमान मदपुमान नैवार्यत यभिदातुम मै त्वाम अकिंचन गोचरम। केवल अकिंचनों के द्वारा ही, अकिंचन मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो केवल उनका एकमात्र धन है वो है भगवान का प्रेम का धन, जिनके पास ये प्रेम का धन है उन्हीं के द्वारा भगवान प्राप्त किए जाते हैं। इतना हद तक कि भगवान को कुंती महारानी आगे श्लोक में प्रार्थना करती है भगवान से, नमो अकिंचन वित्ताया, ये भगवान का नाम ही है, ये भगवान का एक नाम है अकिंचन वित्ताया, जो अकिंचनों के वास्तविक धन हो, जिनके पास कोई धन नहीं है उनका वास्तविक धन आप हो। This is one of the names of Krishna. Akinchana Vittaya. Namo Akinchana Vittaya. Nivrutta Gunavruttaya Atma Ramaya Shantaya Kaivalya Pateya Namaha. जो कैवल्य के मार्ग में प्रगति कर रहे, जो भक्ति के मार्ग में प्रगति कर रहे, वैसे लोगों के वास्तविक पति हो आप, आप एकमात्र पति हो उनके। तो ये अकिंचन वित्ताया, ये अकिंचन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जब हम इसका स्मरण कर रहे थे, अभी इसके पीछे थोड़ा सा सिद्धांत के ऊपर चर्चा किया जाए। भागवतम में नाना प्रकार के उपदेश हमको प्राप्त होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के उपदेश अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए है। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है, ये प्रार्थना का जो अंदर जो उपदेश है वो किसके लिए है, खास करके वैरागियों के लिए है। इसलिए देखिए बहुत भगवान की चातुर्यता है, चमत्कार, जो वैरागों के लिए उपदेश जो है भगवान एक स्त्री के मुख से संसार को प्रचार करते हैं। और खास करके गजेंद्र की जो प्रार्थना है उसमें, गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र बहुत सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं, लेकिन अंत में बोलते हैं कि मैं जानता हूँ असत में शुद्ध भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है, लेकिन अभी मैं फंस गया हूँ, इतना दुर्दैव अवस्था में फंस गया हूँ कि इतना दुख है कि सबसे पहला ये दुख का निवारण कीजिए। ये जो उपदेश है, ये जो प्रार्थना है, जो बद्ध अवस्था के एक स्थिति में जो है, यानी गृहस्थ आश्रम में जो स्थित लोग हैं उनके लिए सूटेबल है। जो अलग अलग प्रकार की प्रार्थना है, अलग अलग प्रकार की जो बद्ध अवस्था के अनुसार उसको सूट होता है। जैसे इधर नारद मुनि का जो उपदेश है वो किसके लिए है? प्रचेताओं के लिए है। हाँ, और ये प्रचेताओं को क्या करना चाहते हैं नारद मुनि? उनको ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये उपयुक्त उपदेश है। अगर यही प्रार्थना, यही उपदेश अगर गृहस्थ को बताया जाए आधाना सब धन को त्याग करो, तो वो फिट नहीं होता है। भले ही उसके अंदर ये भावना होना चाहिए कि कब मैं उस स्थिति को प्राप्त करूंगा, हाँ, लेकिन इसके अंदर बहुत सूक्ष्मता ये पहचानना चाहिए। तो ये कुंती महारानी की जो प्रार्थना है अकिंचन वित्ताया, ये अकिंचनों का एकमात्र धन हो, तो इस प्रकार इधर प्राप्त होता है। कि श्रुता एक प्रकार का गर्व को उत्पन्न करता है, धना ये तीसरे लाइन में दूसरा शब्द है धना, और तीसरा है कुला। मैं बड़ा ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ, मेरे बराबर का कोई नहीं है, हमारा परिवार जानते हो हमारे दादाजी क्या करते थे, हमारा वो क्या करते थे, इस प्रकार की जो बातें हैं ये भी मद को उत्पन्न करता है। हाँ, श्रुत धन कुला। हाँ, उसके बाद कर्म नाम, जानते हो मैं कहाँ काम करता हूँ? ये कंपनी काम करता हूँ। तो इस प्रकार की जो भावना है मदैर्ये, ये मद को उत्पन्न करता है। कुमनिषी नाम, मतलब कौन है जिनके अंदर मद है, ये चार तीसों के द्वारा उत्पन्न हुआ मद है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री या श्रुता धन कुल कर्म नाम से उत्पन्न हुआ जो मद है, इसके वजह से व्यक्ति कुमनिषी नाम हो जाता है। कुमनिषी नाम की वजह से वो करता क्या है? वो करता है पापम, पाप करता है। तो पाप मतलब लोग सोचेंगे नशा करना या ये नॉनवेज खाना, ये सब पाप है, लेकिन असलियत में इस चौथे लाइन में वास्तविक पाप का वर्णन है। क्या है वो वास्तविक पाप? यह है पापम। किस प्रकार का वास्तविकता? विदधाति अकिंचनेषु सतो, अकिंचनेषु सतो, जिनके पास कोई धन नहीं है, जिनके पास कोई चारा नहीं है केवल भगवान के अलावा, वैसे लोगों को धनी व्यक्ति जाके बोलता है देखो कैसा है, भिखारी है, हाँ कुछ नहीं है। तो इस प्रकार भक्तों का अपमान करना या भक्तों के प्रति अपराध करना ये वास्तविक पाप है। द रियल सिन इज टू ऑफेंड ए डिवोटी। तो हम देख सकते हैं इधर पाप, वो लोग पाप क्यों कर रहे हैं? मैं तो धनी हूँ, अच्छा परिवार में जन्म लिया हूँ, सब कुछ अच्छा है, मैं तो पाप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पाप कर रहे हैं। कैसे पाप कर रहे हैं? हाँ, भक्तों के प्रति अपराध करते हुए। दिस इज द रियल पापा। तो क्योंकि ये अपराध की वजह से भगवान उनके आराधना, उनका पूजा को स्वीकार नहीं करते। टेंटेड विद ब्लड, जैसे भगवान भगवता बताते हैं कि व्हाट इज दैट श्लोक जिसमें अर्जुन बताता है कि मैं इस प्रकार करूँगा, रुडिरक प्रदिग्धान, जो खून के द्वारा जो जो चीज़ें है अगर प्रदूषित हो जाता है उसको मैं कैसे अर्पण कर सकता हूँ, मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, हाँ तो रुडिर प्रतिदान। ऐसे इधर जो भक्त लोग अकिंचन हैं उनके प्रति अगर कोई अपराध करता है, भले ही वो बहुत बड़ा आडंबर के रूप में दिखाया जाए मैं भगवान का बहुत सेवा कर रहा हूँ, भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तब प्रश्न उत्पन्न होता है, ठीक है आप तो बहुत बड़ी चीज़ें बता रहे हो, इधर भगवान कुमनिषी नाम इज्जाम ना भजती। ये श्लोक देख के हम सब डर जाएंगे, मेरे अंदर इतना सारा पाप भरा हुआ है, मैंने इतना सारा अपराध किया है, मेरे अंदर इतना सारा गंदगी भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, मैं पूजा कर रहा हूँ क्या भगवान स्वीकार नहीं करते? तो इसलिए ये जानना चाहिए। एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद जी के पास आया, आके बोला कि प्रभुपाद जी Sometimes I do offenses while worshipping. When I am worshipping, I do some offenses. मैं जब पूजा करता हूँ मैं कुछ अपराध कर बैठता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले कि you don't worship. तो घबरा गया, वो तो पुजारी है। तो फिर से पूछा, प्रभुपाद I am the pujari here. Nobody is there to worship. और कोई है नहीं पूजा करने के लिए, मैं पुजारी हूँ इधर का, मैं क्या करूं, और कोई तो है नहीं। प्रभुपाद जी बोले I told you, you don't worship. मैंने बताया तुम पूजा मत करो. तो समझ में नहीं आया था, थोड़ा घबरा गया था. तो प्रभुपाद जी बोले कि यू डोंट वर्शिप, लेट मी वर्शिप. उन्होंने क्या बताया कि तुम पूजा मत करो, मुझे पूजा करने दो. तो वो थोड़ा सा शांत हो गया. तो प्रभुपाद जी, व्हाट मीन टू से यू विल वर्शिप? यस आई एम वर्शिपिंग, मैं पूजा कर रहा हूं. जब आप भोग लगाते हो असलियत में, ये भोग आप नहीं लगा रहे हो, मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप केवल कुछ सेवा कर रहे हो. इसलिए हम देखते हैं कि जब हम इज्जा, जब हम पूजा करते हैं, सारा गुरु परंपरा है, हमारे गुरु महाराज का फोटोग्राफ है, श्रील प्रभुपाद जी का फोटो है. ये क्यों है? क्योंकि असलियत में पूजा मैं नहीं कर रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं. भोग मैं नहीं लगा रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद जी भोग लगा रहे हैं. मैं श्रील प्रभुपाद जी का एक अंग है, ये हाथ के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ. जब तक ये भावना नहीं है तो ये कुमनेशी नाम से इज्जाम, हाँ, ये जो ना भजती, ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे. इसलिए हम देखते हैं कि नाना प्रकार के बहुत सारे बड़े बड़े धनी लोग बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं. प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे इसका, ये जो बिरला मंदिर है बहुत मार्बल से बना हुआ, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है, बड़े बड़े शहरों में है. बोलते हैं कि वो किसका मंदिर है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं है, वो किसका मंदिर है? बिरला मंदिर. अपना नाम को प्रचार करने के लिए उन्होंने मंदिर बनाया. इतना हद तक कि ये तो गुप्त चीज़ है, लेकिन बताना नहीं चाहिए, फिर भी बता रहा हूँ. दिल्ली में जब उन्होंने मंदिर बनाया था तो सब लोग जो है मंदिर को दर्शन करने के लिए जा रहे थे. तब उधर के जितने भी टैक्सी वाले हैं, जितने भी ऑटो रिक्शा वाले, उनको उन्होंने क्या किया था? घूस खिला दिया था. इतना कैसा, क्यों, किसके लिए? अगर कोई व्यक्ति आके पूछता है कि मुझे लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना है, तो बोलते थे वो कहाँ है, हमको नहीं मालूम. हाँ, जब तक वो बोलेंगे मुझे बिरला मंदिर जाना है, तब तक वो उनके टैक्सी में नहीं बिठाएंगे. तो इस प्रकार कुमनेशी नाम, हाँ, क्योंकि अपने धन के ये दमान मदब पुमान, वो क्या करते, बड़ा बड़ा आडंबर दिखाते. तो ये जो भावना है हमको ध्यान में रखना चाहिए. इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए. हमको उन्हीं मंदिरों में जाके जाना चाहिए जहाँ गुरु परंपरा के द्वारा स्थापित हो, जहाँ शुद्धता बनाया गया हो. जहाँ शुद्धता नहीं है तो उधर भगवान स्वीकार नहीं करते, उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते. हाँ, उस जगह भगवान आके विराजमान नहीं होते. ते शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता. जहाँ इस प्रकार का भजन नहीं है, जहाँ तेषां त्वंतगतम पापम, पूरा पाप से रहित व्यक्ति नहीं है, तब तक उनके हाथों से भगवान सेवा को अर्पण नहीं करते हैं. असित में भगवान को सेवा केवल एकमात्र व्यक्ति कर सकता है, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी. नेक्टर ऑफ डिवोशन में भक्ति रसामृत सिंधु प्रभुपाद स्पष्ट रूप में लिखते हैं, टेक्निकली देर इज ओनली वन डिवोटी ऑफ कृष्णा. हाँ, सिद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाए कृष्ण का एकमात्र भक्त है, वो है श्रीमती राधा रानी. तो कुमनिशी नाम सा इज्जाम, क्योंकि इस संसार में सभी लोग, हम सब कुमनिशी हैं. हाँ, इतने सारे हमारे अंदर कलमश है. ये सारे कलमशों के साथ भगवान का अगर डायरेक्टली जाके मैं पूजा करना चाहता हूँ, मैं भगवान को डायरेक्टली अर्पण करना चाहता हूँ, मेरे और श्री कृष्ण के बीच में कोई नहीं है, इस प्रकार की जो भावना है ये सबसे बड़ा अपराध की भावना है. कृष्ण है और मैं है, हम दोनों के बीच में कोई नहीं है. ऐसा लग सकता है कि ऐसे ऐसे बहुत बड़े लोग गीत भी लिखते हैं. हाँ, कृष्ण मेरे सामने हैं, मैं उनके सामने हूँ, और मैं बोलता हूँ तो कृष्ण नाचते हैं. तो इस प्रकार की जो भावना है सबसे बड़ा अपराध की भावना है. इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि सारे भक्तों को बाजू कर दो और मैं भगवान का सीधा दर्शन करूँगा. तो ये जो भावना है ये गौड़ीय वैष्णव की भावना नहीं है. दिस इज नॉट द फिलॉसफी ऑफ द गौड़ीय वैष्णवस. क्योंकि इस श्लोक में स्पष्ट रूप में श्रीमती राधा रानी का एक गुण का वर्णन किया गया है. क्योंकि कुमनिशी नाम से इज्जाम, इस संसार में है तो यही सबूत है कि हम कुमनिशी हैं. हाँ, द वेरी प्रूफ दैट हृदय में कलमश है. हाँ हाँ, ये क्या है, सबूत क्या है? ये शरीर है, ये शरीर है, यही सबूत है कि हमारे हृदय में कलमश है. अगर कलमश नहीं होता, ईर्ष्या गर्व अगर नहीं होता, कि ये शरीर नहीं होता हमारे पास, वी वुड नॉट हैव दिस बॉडी एट ऑल. हाँ, तो ये एकमात्र व्यक्ति का हक है भगवान श्री कृष्ण का आराधना करना, वो है श्रीमती राधा रानी. श्रीमती राधा रानी का सबसे पहला हमारे लिए, फॉर अस, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट श्रीमती राधा रानी? श्रीमती राधा रानी के बारे में सबसे पहला पहचान हमारे लिए अभी बद्ध अवस्था की स्थिति में, साधक की स्थिति में हमको किस रूप में देखना चाहिए, हाउ डू सी राधा रानी, हाँ अति सुकुमारी राधे राधे वो बाद में, लेकिन अभी पहला क्या है, शी इज द गुरु तत्व, हाँ वो हमारे गुरु तत्व है, हाँ गुरु तत्व को सूचित करती है श्रीमती राधा रानी। जिस प्रकार हम बलराम जयंती को मनाए उस समय हम बलराम जी को एक गुरु के रूप में हमने स्वीकार किया उस दिन, या आदि गुरु के रूप में बलराम जी का स्मरण किया, तो वैसे ही जब राधा रानी के राधाष्टमी के दिन हमारे एक हर एक साधक को उनकी गुणावली, अलग अलग प्रकार की कृष्ण के प्रति माधुर्य संबंध और उनके अलग अलग प्रकार के शरीर का अंग कांति वो सब चीज़ का वर्णन के, तो बाद में सबसे पहला साधक को ये देखना चाहिए कि राधा रानी कौन है, वो मेरे गुरु है, यानी मेरे गुरु श्रीमती राधा रानी के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात को जानना होगा। तो ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हमेशा ये भक्तों के मन में ये दुविधा रहता है, क्या कभी कभी हम सुनते हैं कि हमारे गुरु महाराज जो है नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है, कभी कभी हम सुनते हैं कि गुरु महाराज जो है बलराम जी के प्रतिनिधि है, ठीक है मान लिया नित्यानंद प्रभु और बलराम जी एक ही है, ये राधा रानी कहाँ से गुरु बन गए कभी कभी ये मन में हमारे शंका उत्पन्न होता है या दुविधा उत्पन्न होता है, बलराम जी हमारे आदि गुरु है और साथ साथ में श्रीमती राधा रानी भी आदि गुरु है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी कौन है, हाँ वो शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण का प्रकृति है, वो हलादिनी शक्ति है, संवित संदिनी और हलादिनी, ये संवित संदिनी हलादिनी यानी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति या अंतरंगा शक्ति में तीन स्वरूप है, एक है संवित संदिनी हलादिनी, जैसे हम तीन हमेशा सुनते हैं कि सच्चिदानंद, ये बहुत प्रख्यात शब्द है सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन सच्चित आनंद ये में तीन शब्द है सत चित और आनंद, ये सत अस्तित्व में शॉर्ट फॉर्म है, हाँ सनातन का शॉर्ट फॉर्म है, और चित हाँ ये चिन्मया चिंतामणि का शॉर्ट फॉर्म है, और आनंद तो आनंद का फॉर्म है, तो ये सच्चित आनंद ये आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक जगत चित से बना हुआ है, आनंदमय है और शाश्वत है, और ये भौतिक जगत क्या है, ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, जैसे आध्यात्मिक जगत सच्चित आनंद से बना है, संवित संदिनी हलादिनी शक्ति से बना हुआ है, और ये संवित संदिनी हलादिनी उसका विकृत प्रतिबिंब क्या है, सत्व रजस्तमा, हाँ भगवान भगवीता बताते हैं कि सत्व रजस्तमा इति गुणान प्रकृति संभवान तन निबद्धंती, ये सारे लोगों को बंधन में डाल देती है संसार में, क्या तीन गुण बंधन में डाल देते, सत्व रजस्तमा, ये सत्वगुण किसका विकृत प्रतिबिंब है, हाँ रजोगुण किसका विकृत प्रतिबिंब है, ये रजोगुण जो है आध्यात्मिक जगत का जो हलादिनी शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है, और तमोगुण क्या है, वो आध्यात्मिक जगत का जो संवित उसका जो है विप्रिंद, वित मतलब जानना, संवित यानी उसका विपरीत क्या है नहीं जानना, यानी अज्ञान यानी तमस, हाँ संवित संधिनी एग्जिस्टेंस उसका जो विकृत प्रतिबिंब है सत्वगुण है। तो इससे हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी कौन है, श्रीमती राधा रानी जो है वो हलादिनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है, जो भगवान को संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है, और वही हलादिनी शक्ति का विकृत प्रतिबिंब इस संसार में क्या है, रजस है, रजो रागात्मकम, हाँ ये इस संसार को बंधन में डाल देती है, हाँ रजोगुण इस संसार में बंधन संसार के प्रति बंधन में डाल देती है, और जो आध्यात्मिक जगत में जो असली रजस है असली आनंद देने वाली शक्ति है वो क्या है, श्रीमती राधा रानी, वो भी क्या करती है, वो भी भगवान श्री कृष्ण को बंधन में डाल देती है, क्योंकि रजस मतलब रागा अटैचमेंट, हाँ यही अटैचमेंट का कार्य आध्यात्मिक जगत में करती है श्रीमती राधा रानी, वो क्या करती है, हाँ भगवान श्री कृष्ण को भक्तों के प्रति जो अटैचमेंट है वो बढ़ा देती है, सिद्ध में बहुत सूक्ष्म विचार है, गुरु का कहा क्या कार्य है, गुरु का एकमात्र कार्य है किस प्रकार भक्तों को भगवान के प्रति जो स्नेह है उसको बढ़ाने का कार्य करना, हाँ किस प्रकार अलग अलग प्रकार की सेवाओं में नियुंजतोपि मंजन मर्जनादिशु, हाँ अलग अलग प्रकार की जो भक्ति के कार्यकलापों में युक्त करके गुरु क्या करते हैं, भक्तों के अंदर भगवान के प्रति स्नेह या राग को उत्पन्न करते हैं, और वही कार्य श्रीमती राधा रानी कर रही है, हाँ ऐसे कैसे पता पता लगता है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी हलादिनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। हलादिनी शक्ति का विकृत प्रतिबिंब क्या है, वो है रजस। और रजस इस संसार में क्या करते हैं, संसारिक लोगों के प्रति हमारा राग को वर्धन करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी इज द ओरिजिनल गुरु तत्व। तो हमको हमेशा श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि आज के दिन कृपया करके मुझे, जब मैं अपना गुरु को दर्शन करूँगा तो इस प्रकार मुझे इस प्रकार की दृष्टिकोण से देखूं कि अस्तित्व में मेरे गुरु कौन है, मेरे श्रीमती राधा रानी यानी आप ही के प्रतिनिधि है। तो आप जो कार्य मुझसे कराना चाहती है वो मेरे गुरु मेरे द्वारा करा रहे हैं। अस्तित्व में बहुत गहरी बात है। हाँ, ये सोचेंगे तो राधा रानी मुझसे क्या कराना चाहती है, सब लोग भावावेश में होकर राधा रानी राधे राधे बोलते हैं, लेकिन ये जानना चाहिए राधा रानी आपसे क्या कराना चाहती है। सोचते हुए डर लगता है, लेकिन वही कार्य आपके गुरु आपसे करा रहे हैं। बहुत गहरी बात है, बहुत भारी बात है, खास करके सारे साधकों को। हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण आदि गुरु है, और श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना वो श्रीमती राधा रानी जानती है। शी नोज हाउ टू सैटिस्फाई कृष्ण। और गुरु भी ऐसे ही है, वो भी दक्ष है, वो जानते हैं किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए हम गुरु आष्टक में गाते हैं, क्या गाते हैं कि तत्रादि दक्ष अतिवल्लभस्य, वो बहुत दक्ष है, ही इज वेरी एक्सपर्ट इन अरेंजिंग फॉर द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण। तो असलियत में हम रोज जब गुरु अष्टकम गाते हैं, हम गुरु के हृदय में राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम के संबंध है उसको हम गुरु के हृदय में देखते हैं। असलियत में ये तभी देख सकते हैं जब हमारे पास राधा रानी का कृपा है। वो तभी मिलेगा जब हम हमारे गुरु को इस प्रकार दर्शन करेंगे। किस प्रकार, राधानादि के प्रतिनिधि के रूप में दर्शन करेंगे। या और गहराई से अगर समझना है कि ये सोचना कि राधा रानी जो मुझसे कराना चाहती है, अस्तित्व में मेरे गुरु जो करा रहे हैं उसके द्वारा राधा रानी मुझसे कार्य करा रही है। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर अबाउट श्रीमती राधा रानी, टू अंडरस्टैंड दैट श्रीमती राधा रानी इज द ओरिजिनल गुरु तत्व। तो इसलिए भले ही हम कुमनेशि नाम, भले ही हृदय में बहुत सारे कलमश है, ये दमान मदपुमान सारे मत से भरा हुआ है, ऐश्वर्य मात्सर्य नाना प्रकार की गंदगी से भरा हुआ है, अगर वी इफ वी बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर देन कृष्णा हैज टू एक्सेप्ट। जिस प्रकार जहाँ भक्ति भावना है, जहाँ भक्ति है, भले केरे का छिलका भी दिया जाए, भगवान ने इस प्रकार स्वीकार किया। भगवान जब राधा रानी अगर कुछ भी देती है, भगवान आँख बंद करके उसको खाना ही पड़ेगा, शी हैज़ टू ईट। पता नहीं इसके प्रति पीछे कोई वृंदावन में कोई लीला भी है, वो कहीं सुना था लेकिन स्मरण नहीं आ रहा है। राधा रानी कुछ खिला देती है और भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसा सम लीला इस कि हम सुन रहे थे कहीं। बहुत सारे अनंत लीला है जो हम जानते हैं, लेकिन ये बात को ध्यान में रखना होगा कि भले ही कुमनेशि नाम है, कृष्णा हैज़ टू एक्सेप्ट। क्योंकि वो गुरु परंपरा के द्वारा गया है, श्रीमती राधा रानी वो सब के जो सेवा है वो स्वीकार करती है और भगवान को अर्पण करती है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट श्रीमती राधा रानी। तो ये पहला जो लाइन में न भजती कुमनेशि नाम से जाम, इसका राधाष्टमी के साथ क्या संबंध है हमने जाना। अभी दूसरा, विदत्ति पापम अकिंचन सत्सु अकिंचनेश सत्सु। ये पापम हमने चर्चा किया कि ये पाप है क्या, सबसे महान पाप क्या है। सबसे महान पाप गोहत्या नहीं, ब्राह्मण का हत्या नहीं, बल्कि क्या है वो, वैष्णवों के प्रति अपराध करना। क्योंकि अगर कोई भी बड़ा पाप है, जितना ही बड़ा पाप किया उसका कुछ ना कुछ पश्चाताप कर सकता है, वेदों में वर्णन है। लेकिन ये जो अपराध का नामक जो पाप है, इसका कोई इलाज नहीं है। देयर इज नो अदर, इवन जैसे प्रभुपाद जी प्रपोर्ट में लिखते हैं कि अब दुर्वासा मुनि के पास इतना शक्ति था कि भगवत धाम जा सकता था, भगवान से साक्षात संपर्क करके बात भी कर सकता था। इतना शक्तिशाली होने पर भी ये जो पाप का जो क्षय है, अपराध का पाप का क्षय है, वो कभी नहीं है। जब तक वो वापस आके अम्बरीश महाराज का पैर नहीं पड़ा, तब तक सुदर्शन उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो ये जो शब्द है अपराधा, इसके अंदर राधा शब्द है। तो राधाष्टमी के दिन ये अपराध के बारे में चर्चा करने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपराधा, राधा मतलब क्या है, प्रेम। राधा मतलब गाढ़ प्रेम, अपराध मतलब नहीं प्राप्त होना, प्रेम नहीं प्राप्त होना, या दूसरे शब्दों में वो कार्य जिसके वजह से हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है उसको अपराध बोलते हैं। बोलते हैं अपराध मत करो, ये मत करो, लेकिन अपराध का वास्तविक मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपराध? द रियल मीनिंग ऑफ अपराध इज नॉट जस्ट ऑफेंस, द एक्टिविटी बाय विच यू विल नॉट अटेन कृष्ण प्रेम। और हम सब किसके लिए है? इधर कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए है। अगर अपराध करेंगे, जिसको प्राप्त करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं वो ही चीज़ प्राप्त नहीं होगा, देन व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग दैट? तो इसलिए हमको आज के दिन श्रीमती राधारानी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे श्री राधे, मुझे ये सारे वैष्णवों के प्रति जो अपराध है उससे मुझे बचाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कृष्ण प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हो, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हो, हाँ अस्तित्व में आपको प्राप्त करना है तो मुझे अपराध से बचना होगा। तो अपराध से बचने के लिए हमको क्या करना होगा? व्हाट आई एम सपोज टू डू? मैं जानता हूँ मेरे पास धन है, मेरे पास विद्वत्ता है, मेरे पास अच्छे परिवार में जन्म लिया है, मैं बड़ा कार्य कर रहा हूँ, मैं बहुत दक्ष हूँ बड़े बड़े कार्य करने में। जैसे ये चीज़ें मिलता है स्वाभाविक है ये हमारे अंदर अहंकार आना स्वाभाविक है। क्या सोल्यूशन है, क्या रास्ता क्या है? जिसके पास अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी धन आ जाता है तुरंत वाह अभी धन आ गया ना, अभी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, हाँ मेरे पास दक्षता है ना, मैं देखता हूँ कि मेरे बराबर का कोई और कर सकता है क्या, अगर मैं नहीं करूँगा कोई और तो कर नहीं पाएगा, हाँ तो मेरा इंपॉर्टेंस रहेगा। तो इस प्रकार की भावना ये स्वाभाविक है, बद्ध अवस्था में आया गई, खास करके साधन अवस्था में तो और आएगा, क्योंकि भौतिकवादियों को तो माया तो घेर लिया है पहले से ही, लेकिन भक्तों वक्त लोग जो माया से चंगुल से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो माया और उसके प्रति शक्तिशाली हो जाएगी। तो इसलिए और केयरफुल होना चाहिए और साधक को अपराध से बचने के लिए बहुत केयरफुल होना चाहिए। तो क्या रास्ता क्या है अपराध से बचने का? क्योंकि धन है, मना नहीं कर सकते, बहुत सारा धन है, इवन ब्रह्मचारियों के पास भी धन है खास करके अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में, और दक्षता है क्योंकि कुछ भौतिक योग्यता की वजह से बहुत कुशलता है या विद्वत्ता है, मना नहीं सकते, कर्म नाम अच्छा दक्षता के बहुत सारा अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, सब है। तो इससे उत्पन्न हुआ गर्व भी है, मद भी है, तो क्या करें अपराध से बचने के लिए? तो इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अगर व्यक्ति बहुत खूबसूरत नहीं है, बहुत गंदा दिख रहा है, अगर वो आभूषण पहन लेता है तो बहुत सुंदर दिखने लगता है, हाँ इसलिए हम देखते हैं कि अगर कोई कन्या बहुत सुंदर दिख नहीं रही है उनको मेकअप वेकअप करके वो दूल्हा के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, देखो हमारी बेटी कितना सुंदर है तो उसको स्वीकार करना पड़ता है तो वैसे ही हमारे अंदर ये चित कुमनीषी नाम इतने प्रकार की गंदगी की वजह से बहुत कुरूप हो गया, हमारा सुंदरता नहीं है भक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। लेकिन अगर थोड़ा सा आभूषण पहन लेंगे तो हमारा सुंदरता को कॉम्पनसेट करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये जो वैष्णव आचरण है, ये वैष्णव आचरण हमारा जो कुमनीषी नाम उसको ढक देता है, उसको कवर कर लेता है, उसको कॉम्पनसेट कर लेता है। भले ही भक्त भक्त सुंदर है, लेकिन ये जो थोड़ा बहुत साधन की अवस्था में जो गंदगी की वजह से वो गंदा दिख रहा है, लेकिन अगर कोई वैष्णव व्यवहार या वैष्णव आचरण या वैष्णव एटिकेट बोला जाता है इसको अगर वो धारण कर लेता है तो ये अंदर की जो गंदगी है वो अंदर ही अंदर रह जाता है और बाहर बहुत सुंदर दिखता है। इसके वजह से भगवान या राधा रानी उनकी गुरु परंपरा का जो उनका नज़र है उसके प्रति आकर्षण हो सकता, वो लोग उसके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। तो ये वैष्णव व्यवहार इसको हमको सीखना चाहिए, किस प्रकार हम भक्तों के प्रति व्यवहार करना चाहिए, अभक्तों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो ईर्ष्यालु है उनके प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो कनिष्ठ भक्त है उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो बहुत एडवांस भक्त है उनके प्रति व्यवहार कैसे करना चाहिए, जो वरिष्ठ भक्त है उनके प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो सामान्य हमारे साथ में जो रहते हैं उनके प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि ये हमको अपराध करने से बचाता है। जैसे रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, मदमत्त हाथी का वर्णन करते हैं, ये जो भक्ति लता बीज को उगाने के लिए बहुत सिंचन करते हैं, पानी वानी डाल रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रोज श्रवणम कीर्तनम सब कुछ चल रहा है, ये भक्ति लता बीज रोज उग रहा है, लेकिन ये मधुमत्ती हाथी आ गया तो क्या होगा? वो पूरा जो बगीचा है, सुंदर भक्ति का जो बगीचा जो हृदय में है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये बगीचा को बचाने के लिए क्या करना होगा? एक फेंस डालना होगा। हाँ, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेज हिंदी में? फेंस, मेड, बाउंड्री है, जो भी है, हाँ, चार दीवार है, जो भी है वो बांधना होगा। हाँ, तो ये मधुमत हाथी को अंदर आने से बचाता है। ये बाउंड्री क्या है जिसके द्वारा हमारे भक्ति को बचा के रख सकते हैं? ये बाउंड्री है, ये है वैष्णव एटिकेट्स, वैष्णव आचरण। जब ये सुष्ठ रूप में अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार वैष्णव आचरण को करता है, हाँ, तो इसका जो भक्ति है वो धीरे धीरे से बढ़ के वो सारे ब्रह्मांडों को छेद करके कृष्ण के चरण कमल तक आके वो फल को प्रदान करता है। वो क्या है? वो कृष्ण प्रेम नामक फल को वो प्रदान करता है। तो हमने आज का जो श्लोक है, इस श्लोक का जो दो विभाग है, एक है किस प्रकार हमारा हृदय में कलमश होने पर भी हमको पूजा करना नहीं छोड़ना चाहिए, और किस भावना से पूजा करना चाहिए, वो इस भावना से पूजा करना चाहिए, असलियत में मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान को अर्पण नहीं कर रहा हूँ, मेरा भगवान के साथ सीधा संबंध नहीं है, मेरा भगवान का संबंध जो है भक्तों के द्वारा है, खास करके श्रीमती राधारानी के द्वारा है। और राधारानी कौन है हमारे लिए? फरस राधारानी इज श्री गुरु, श्री गुरु इज अवर राधारानी। हाँ, तो ये बात हमने पहला इस श्लोक में सीखा। और दूसरी बात हमने ये सीखा कि अपराध, अगर राधारानी को प्राप्त करना है यानी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो अपराध से बचना होगा, क्योंकि अपराध शब्द में ही ये राधा है, कृष्ण प्रेम है, अप मतलब नहीं प्राप्त ना, वो कार्य जिसके द्वारा हमको ये प्राप्त नहीं हो। और उसको कैसे बचे? उसको बचने का रास्ता क्या है? वैष्णव व्यवहार को अच्छी तरीके से पालन करना। तो हमने ये आज के श्लोक के ऊपर आधारित होकर राधारानी का बारे में हमने कुछ सीखा, लेकिन राधाष्टमी है तो अपने आप को तो थोड़ा रोक भी नहीं सकते, थोड़ा बहुत उनके बारे में कुछ और भी चीज़ें चर्चा करेंगे। तो वासुघोष प्रभु या वासुघोष आचार्य जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो महान आचार्य है, जो बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं, वो बोलते हैं कि यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो राधार महिमा प्रेम रो शशिमा जगत जानते के। ये लाइन जो भी लोग राधाष्टमी मनाना चाहते हैं, राधा श्रीमती राधारानी का गुणगान करना चाहते हैं, ये जो गीत का पहला लाइन जाने बिना नहीं कर सकते, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। लेकिन इसमें, इस लाइन में बहुत बड़ा विशेषता है। क्या है वो विशेषता? यदि गौर ना हो तो, अगर गौर नहीं है, नहीं आते, या भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में नहीं आते तो भी की हुई तो मेरा क्या होता? राधारा महिमा, श्रीमती राधारानी का जो महिमा है, जो प्रेम और शशिमा, जो प्रेम का जो शशि है, जगत जाने थे के, ये सारा जगत कैसे जानता? इसका मतलब क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले राधारानी का महिमा कोई नहीं जानता, दैट इज अ फैक्ट। यदि गौर ना हुए तो तबे की हुई तो मेरा क्या होता? ये है गौड़ीय वैष्णव मूल, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम लीला का वर्णन नाना शास्त्रों में नाना प्रकार के भक्त लोग बहुत इतिहास में कर चुके हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा के अनुसार श्री राधारानी को समझना, क्योंकि ये जो बात है श्रीमती राधारानी का वास्तविक महिमा, एक होता है महिमा, दूसरा है वास्तविक महिमा, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही घोषणा हुआ है। खास करके गौड़ीय वैष्णव को अगर श्रीमती राधारानी के बारे में जानना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु, जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का महिमा गुणगान किए उसी प्रकार हमको समझना होगा, नहीं तो अपराधा अपराध हो जाएगा, नहीं तो सहजिया हो जाएंगे। सहजिया होने से बचना है। वृंदावन जाने के बाद श्रीमती राधा रानी का गुणगान पढ़ते हुए भी, पढ़ने के बाद सहजिया होने से बचना है, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी के लेक्चर में चार लेक्चर है श्रीमती राधा रानी के अपीयरेंस डे के दिन, उस लेक्चर में पढ़ रहा था कि बार बार ये सहजिया लोगों के बारे में श्री प्रभुपाद जी वर्णन किए, तो मैं सोच रहा था कि कुछ तत्व भी उतना प्रकाशित नहीं किया गया उन लेक्चर्स में। बार बार Srila Prabhupada ji bolte hai ki be very careful when you talk about Srimati Radharani and loving affairs with Krishna. Bahut savadhan rahiye jab aap Srimati Radharani aur Krishna ke bare mein, itne saste nahi hai. He is not so cheap. Jab aap kuch bhi is prakar varnan kar sakte ho. Ek bar ek vyakti Srila Prabhupada ji ke paas aaya dakshin Bharat mein. Wo bahut dhani vyakti tha. Itna unko bada bangla tha, Ooty mein kahin to tha. Tab wo bar bar Srila Prabhupada ji ke paas aake पूछा कि मुझे राधा कृष्ण का लीला सुनाइए, राधा कृष्ण का लीला सुनाइए. तो श्रील प्रभुपाद जी बोले तो अवॉइड कर रहे थे, लेकिन बार बार व्यक्ति बोल रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी बोले मैं नहीं जानता हूँ. तो ये व्यक्ति बोला नहीं आप ऐसा कैसे हो सकते, आप तो महान भक्त है, राधा कृष्ण की उपासना करते, आप तो जानते ही होंगे. तब श्रील प्रभुपाद जी बोले कि अगर मैं जानता भी होऊंगा, मैं वर्णन करने का मेरे पास योग्यता नहीं है. तब ये व्यक्ति घबरा गया. तो बोला नहीं नहीं आप तो महान भक्त है. तो बोला कि मेरे पास योग्यता नहीं है. हो सकता है तुम्हारे पास योग्यता हो सुनने का, लेकिन मेरे पास बोलने का योग्यता नहीं है. तो वन शुड बी वेरी केयरफुल, बहुत सावधानी से इन राधा कृष्ण लीलाओं के बारे में चर्चा करना होगा. क्योंकि अपराध दो प्रकार का, एक है उसको सस्ता कर देंगे, या दूसरा है श्री चैतन्य महाप्रभु की जो धारा है उस धारा के अलग होकर अगर वर्णन किया जाता है गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के मंदिरों में बैठ के अगर थोड़ा सा श्री चैतन्य महाप्रभु का समझ के अलग से. श्री प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे डोंट डिस्टर्ब द मूड ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका मूड को कभी डिस्टर्ब मत करो, उनसे हट के अगर कोई चर्चा करता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. इसलिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके सारे गौड़ीय वैष्णवों को, कि जोदु गौरु ना हो तो तबे की हो तो राधारा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानते के. जगत नहीं जानता है श्रीमती राधा रानी को अगर श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते. तो वंस यू अंडरस्टैंड श्रीमती राधा रानी थ्रू श्री चैतन्य महाप्रभु, अस्तित्व में भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आया, हाँ वही केम, हाँ उसके बारे में हम तो गौर पूर्णिमा के समय में चर्चा किए. लेकिन संक्षिप्त में अगर जाना जाए, लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं. वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा. भक्ति होता क्या है, भक्ति होता क्या है, भगवान कैसे सिखाएंगे, एक भक्त का रूप धारण करेंगे तभी सिखाएंगे. वो भक्त कौन है असलियत में, इफ देर इज एनी डिवोटी टेक्निकली देर इज ओनली वन डिवोटी. ये बार बार स्मरण की जाए, इस संसार में अगर भगवान श्री कृष्ण का अगर भक्त कोई है वो कौन है. तो भगवान श्री कृष्ण को और कोई दिखा नहीं, तो इमीडिएटली फाउंड श्रीमती राधा रानी. तो उनका भावना को अर्पण किया और सारा जगत को शिक्षा दिया. हाँ भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के रूप में जब आए तो उन्होंने सर्वधर्मान परित्यज्य बड़ा बड़ा लेक्चर देकर चले गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने लेक्चर नहीं दिया. उन्होंने क्या किया, अपन ही आचर्य तो अपने स्वयं आचरण किया. और आचरण करने के लिए अगर कोई प्रमाण है, अगर कोई आइडियल पर्सन है, वो कौन है, श्रीमती राधा रानी है. तो श्री कृष्ण सोचे कि लोगों को अगर दिखाना है भक्ति होता क्या है, मुझे क्या करना होगा, श्रीमती राधा रानी का भावना को अपना पड़ेगा. तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का मूड को अपना के श्री कृष्ण वो सारे जगत को दिखा सिखाया. शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य धारी कृपाम्बुधिर यस्तमहम पद्ये. इस प्रकार सावन भट्टाचार्य प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रीमती राधा रानी का भावना को अपना के आप आया और दिखाया किस प्रकार भक्ति करना चाहिए, हाउ टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस. तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों के चलते हुए श्रीमती राधा रानी या राधाष्टमी का थोड़ा बहुत फीचर्स चर्चा करेंगे. बहुत सारे तत्व है लेकिन उनमें से कुछ चीज़ों को हम चर्चा करेंगे, सम इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफिकल पॉइंट्स. क्योंकि लाला प्रभु ने हमको बोला कि प्रभु जी आप तत्व का चर्चा किया है, दोपहर को देवकिंदन प्रभु आके लीला चर्चा करेंगे. तो वो जानते हैं मेरी योग्यता को. तो सबसे पहला पॉइंट ये है, हमने तो राधा रानी का गुरु और अपराध के बारे में चर्चा किया कि श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रासलीला छोड़ दिए. जैसे रासलीला छोड़ दिए, रासस्थली छोड़ के गायब हो गए, तो सारे गोपियां विरह में गीत गाती है. और श्रीमद् भागवतम का सर्वोच्च अगर प्रार्थना कुछ है वो क्या है, वो गोपी गीतम. जिसमें गोपियां भगवान की विरह में उनको ढूंढते हुए उनकी हृदय की भावना को व्यक्त कर रही है। व्यक्त करते हुए ये एक एक श्लोक के बाद उनकी जो भगवान के प्रति जो प्रेम का जो उनके हृदय में प्रेम है उनको अलग अलग शब्दों में प्रस्तुत करते करते आखिरी श्लोक में वर्णन करती है। यत्ते सुजात चरणाम्बुजम स्थनेशु भीता शनि प्रिय दधी महे कर्कशेशु। हे भगवान, आप अभी रासस्थली छोड़ के चले गए। हम जानते हैं रासलीला जो है नंगे पैर होता है, कोई जूता चप्पल पहन के नहीं होता है। तो आप अभी रासस्थली छोड़ के चले गए जंगल में, और जंगल में पत्थर है, नाना प्रकार की कांटे हैं, और इनके जो आपके चरण को वो तकलीफ देते होंगे। हमारा ये चिंता हो रहा है क्योंकि यही चरण अस्तित्व में जब हमारे स्तनों के ऊपर उनका चरण पड़ता है तो हमारा स्तन ही पत्थर जैसे है। तो वास्तविकता में जब पत्थर आपके चरण को स्पर्श करता है, उनको दबाता है, तो कितना दुख का महसूस होता होगा। अस्तित्व में आपका दुख महसूस करते हुए हमको बहुत दुख हो रहा है। तो इधर नाना प्रकार के आचार्य श्री चैतन्य महापुरुष पहले सारे भक्त गोपियों की भक्ति का महिमा वर्णन करते हैं। कितने महान भक्त है भगवान श्री कृष्ण, गोपियां भगवान श्री कृष्ण कितने महान भक्त है, उनके हृदय में कितनी लालायता सुंदरता है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव इसको बाजू में रखते हैं, दे डोंट वांट। क्योंकि गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि राधारानी सुपीरियर टू कृष्ण, राधारानी कृष्ण से शक्तिशाली है, कृष्ण से सुंदर है और कृष्ण को अपने वश में रखती है। और ये जो बात है, इधर क्या कर रहे, क्या दिखाई पड़ रहा है भागवतम में, कि सारे गोपियां और राधा रानी कृष्ण के वश में है। तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रकाशित किया इससे भी परे है। भागवत में वर्णन किया गया किस प्रकार कृष्ण सारे गोपियों को वो नचाते हैं, लेकिन उधर वर्णन नहीं है किस प्रकार राधारानी कृष्ण को नचाती है। इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड। तो क्यों रासस्थली छोड़ के गए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतना जानते हुए भी ये गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त है और उनके बराबर शरणागति इस संसार में किसी का नहीं है। इतना हद तक कि उनका शरणागति इतना है कि ना पा रहे हम, मैं उनका ऋण को कभी चुका नहीं सकता हूं। ये सब जानते हैं कृष्ण, जानते हुए भी रासस्थली को क्यों छोड़ के गए? वही लेफ्ट, क्योंकि सारे संसार को दिखाना चाहते हैं गोपियों की महिमा। ये एकमात्र उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। आई वॉन्ट टू शो हाउ ग्रेट दिस गोपीज आर। तो जहां जहां जिन लीलाओं में श्री कृष्ण राधा रानी और सारे गोपियों को तकलीफ दिया है, विरह प्रदान किया है, गौड़ीय वैष्णव उनको महत्व नहीं देते हैं। किसका महत्व देते हैं? जिन लीलाओं में राधा रानी रासस्थली छोड़ के चली गई और कृष्ण हृदय में राधा रानी के बड़ी लालायत हो रहे, वो लीलाएं स्मरणीय हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हजारों लाखों लोग वृंदावन में आते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं, दिल्ली से भर भर के बस लोग बसेस में आते हैं, लेकिन अधिकांश लोग कहाँ जाते हैं? बांके बिहारी जी, उधर गए दर्शन किया, कुछ दान वान दिया, उधर आजू बाजू में जो खाने को मिलता है वो सब खाया पिया चला गया। कहाँ गए थे? वृंदावन गए। असल में वृंदावन कहाँ गए वो लोग? हमको ये वृंदावन का एक भक्त हमको इस बात को बता रहे थे कि लाखों लोग वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन असलियत में वो वृंदावन में बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था कि लाखों लोग वृंदावन में आ रहे लेकिन असलियत में कोई वृंदावन में नहीं आ रहा है। अगर सच में अगर वृंदावन आना है, जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए उसी प्रकार आना है। और श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आके क्या करते थे? वो बैठते थे हमेशा इमली तला पे, वॉज सिटिंग एट इमली तला। हाँ, जब हम इमली तला में गए थे उधर वो भक्त बता रहा था कि अब देखो परिक्रमा में कितने लोग जा रहे हैं, इधर कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है, हार्डली। केवल 1% लोग जो परिक्रमा करते हैं वो 1% लोग ही आते हैं। ओनली 1% ऑफ द पीपल कम देयर। ये स्पष्ट रूप में हृदय से बता रहा था, बोलता है कि जो लोग इधर आए वो असलित में वृंदावन आए। ओनली दोस पीपल कम टू वृंदावन। तुम तो चकित हो गया, बोला कि बहुत सारे प्लेसेस है, बहुत सारे जगह है, उनमें से एक जगह नहीं आए तो वृंदावन नहीं आए, ऐसा कैसे? तो उन्होंने बताया जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए तब कहाँ बैठते थे, इस इमली तालाब पर बैठते थे, ये इमली का वृक्ष अभी भी है। ही वॉज सिटिंग देयर। क्यों बैठते थे? क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे, वो कौन से जगह पे वो मालूम नहीं, और उधर से श्रीमती राधा रानी गायब हो गई, चली गई। तब श्री कृष्ण राधा रानी के हृदय में पूरा वृंदावन घूमे, इधर उधर घूम 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 के इमली तालाब पे आके बैठ गए। बैठ के श्रीमती राधा रानी के विरह में, राधा रानी के बारे में सोचते 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 उनका जो श्याम रंग है वो गोरा हो गया। सारा जगत कृष्ण की भक्ति करता है लेकिन कृष्ण किसका भजन करते हैं? राधा रानी का भजन करते हैं। इधर हम जानते हैं किस प्रकार यमुना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और स्मरण की भावना में वो क्या हो गई, नीले रंग की हो गई। जो व्यक्ति जिसका स्मरण करता है, जिनका भजन करता है, उसी प्रकार का गुण को प्राप्त करता है। और भगवान श्री कृष्ण सबसे पहला गौर रूप को इमली तला में प्रकट किया, क्योंकि जब श्री कृष्ण राधा रानी का भजन करते हैं, करते करते उनका स्मरण इतना बढ़ जाता है कि वो स्वयं श्रीमती राधा रानी का रूप स्वीकार कर लेते हैं। तो उसी लीला को स्मरण करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उधर बैठ जाते थे। दैट इज वृंदावन दर्शन। अगर गौड़ीय वैष्णव है, दिस इज वृंदावन दर्शन। बांके बिहारी बाकी सब सेकेंडरी, बट दिस इज वृंदावन दर्शन। ये है गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो राधर महिमा प्रेम रसुषिमा जगत जानते के। तो ये बात महत्वपूर्ण है। हाउ कृष्णा ये सब सर्वियंट टू राधा रानी। एक बार राधा रानी श्री कृष्ण दोनों मिले, कृष्ण बोले कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, झगड़ा करना चाहता हूँ। राधा रानी बोले ठीक है, पंजा लड़ाएंगे, युद्ध करेंगे, कुश्ती करेंगे। वो कुश्ती में श्री कृष्ण हार जाते हैं। और हम जानते हैं श्री कृष्ण मदन मोहन है, लेकिन राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी है। राधा रानी के बहुत सारे गुण हैं, 25 गुण का वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी पाद। उनमें से जो आखिरी गुण है वो है श्री कृष्ण को वो अपने वश में रखती है। शी इज कंप्लीटली कंट्रोलिंग कृष्णा। ईश्वर परम कृष्णा है, वो परम कृष्णा को नियंत्रण करने वाली है, वो है वृंदावनेश्वरी। वृंदावन के राजा कौन है? राजा कोई नहीं है उधर, तो राजा है रानी है। हाँ, हमारे प्रभु जी बहुत एक्सपर्ट है, कृतज्ञ प्रभु माधव महोत्सव का वर्णन करने में किस प्रकार राधे वृंदावनेश्वरी कैसे पड़ा, सारे ब्रह्मा शिव सब लोग आके राधा रानी को उनको राजत्व प्रदान किया, एक रानी का स्थान प्रदान किया। सो दिस इज हाउ शी कंट्रोल्स कृष्णा। और एक लीला वर्णन है, ये लीला जो है इस युग में नहीं हुआ था, इट हैपेंड इन द प्रीवियस कल्प। वर्णन करते आचार्य किस प्रकार एक बार राधा रानी बहुत श्री कृष्ण के प्रति गुस्सा की भावना अपना के हुए, क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि श्रीमती श्री कृष्ण किसी और के पास है, चंद्रावली के पास है, ऐसा कुछ मालूम पड़ा तो गुस्से में बैठ गई। तब श्री कृष्ण वो आते हैं, आते सामने देखते हैं कि कुंज में प्रवेश करते हुए ठाट ठाट जा रहे थे, तो उसी समय ललिता और विशाखा रोक देती है, बोलते आप नहीं जा सकते हो। तो उस समय घूम घूम के परेशान होकर किसी के पास गया, तो उधर पौर्णमासी बोलती है ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन आपको एक मूछी, जो बार्बर है मूछी है, उसका पुत्री का रूप धारण करना पड़ेगा, सूची और मूछी। अब देखो भगवान कहाँ, हाँ उनको क्या बोला जाता है, उनको सारे सारे लोगों में श्रेष्ठ है, लेकिन अभी वो वही भगवान सारे ब्रह्मांडों का नायक अभी क्या रूप धारण किया, एक मूछी का पुत्री, पुत्र भी नहीं, पुत्री का रूप धारण किया। किसके लिए धारण किया? फॉर हुम? फॉर राधा रानी। और ये पुत्री का रूप धारण करके वो गए, तो बोले कि मैं मंजरी हूं। तो लोग पूछे कि कौन सा मंजरी है, नाम क्या है तुम्हारा, कौन सा क्या नाम है? बोले नवीन मंजरी। अरे नवीन मंजरी, नया मंजरी ये कौन सा मंजरी है? तब बोले कि अच्छा तुम, तो बोली मैं नवीन मंजरी हूँ, कुछ सेवा है तो बताइए। मैं एक बारबर की पुत्री हूँ, मैं मसाज वसाद कर सकती हूँ, नाना प्रकार का बाल को सजा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तब बोला कि रुको, तो ललिता गई पूछी कि राधा रानी ऐसा है? तो राधा रानी बोले ठीक है बुलाओ, अगर कोई सेवा करना चाहती है तो मेरा चरण का सेवा करे, कुछ तेल वेल लगा के मालिश करे। तब वहाँ के बोलते हैं कि ठीक है एक काम है, हमारी जो सखी बहुत मान लेके बैठी है श्रीमती राधा रानी, उनका चरण का सेवा है, करने के लिए तैयार है। हाँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, चलो चलो। तो भगवान श्री कृष्ण इस रूप में गए और राधा रानी का चरण का सेवा करना शुरू किए, और चरण का सेवा करना शुरू कर रहे थे, वो सोचने लगे कि ये तो कितना देर के लिए करूँगा मैं, आधा घंटा, एक घंटा, कुछ समय के बाद मुझे जानना होगा, चले जाना होगा, तब राधा रानी का चरण सेवा का मौका नहीं मिलेगा मुझे। तब तुरंत उनको पद्म पुराण का एक श्लोक आया, हाँ, जिसमें बताया गया है क्या हो, हाँ, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, मैं और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं हमेशा मेरे नाम में रहता हूँ, मेरे नाम में मुझे कोई अंतर नहीं है, तो मैं राधा रानी के चरण में मेरा नाम लिख दूंगा करके वो उधर श्यामा लिखे। जैसे लिखे तो राधा रानी बोले क्या कर रहे हो इधर, तो रवीन मंत्री बोले श्यामा करके सखी है उनका नाम याद आ गया मुझे। तो राधा रानी बोली नहीं नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, देखो ये श्यामा करके लिखा है तो इनको कुछ मसाज वसाज करना नहीं आता, कुछ अपने ख्यालों में रहती है करके उनको राधा रानी ने लात मारा। श्री कृष्ण का जैसे हृदय में राधा रानी का चरण का स्पर्श हुआ, तब उनको सारे महाभाव के जो विकार है वो प्रकट हो गए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ये चरण कमल का, राधा रानी का चरण कमल का जो स्पर्श जो उनके हृदय में हुआ है, ये जो है उनको हमेशा आभूषण के रूप में मान के व्रज में घूमते हैं। यही बात और आगे चलते हुए जयदेव गोस्वामी प्रकाशित करते हैं, क्योंकि राधाष्टमी के दिन जयदेव गोस्वामी का चर्चा किए बिना राधाष्टमी होता नहीं है, खास करके एक दक्षिण भारत से आए हुए व्यक्ति को क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा ये तीन ग्रंथों को, चंडीदास, जयदेव गोस्वामी और कृष्ण करुणामृत दुल्ल मंगल ठाकुर के द्वारा रचित ये ग्रंथों को आस्वादन करते थे। हमारा पता नहीं बचपन से विशेष लगाव है कृष्ण करुणामृत, और ग्रंथ का नाम सुना था बस, कोई पढ़ी पढ़ा नहीं है, और जयदेव गीत गोविंदम क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत विख्यात है ये। तो इस गीत गोविंदम का सीन इस प्रकार है, जिसमें हाँ मेदुरम अंबरम, अभी नंद महाराज बोलते हैं कि नंद महाराज सब लोग बाहर गए हुए कहीं इधर अपने अलग अलग प्रकार कार्य करने के लिए, कृष्ण भी शिशु के रूप में है। हाँ तब नंद महाराज बोलते हैं राधा रानी को, देखो हमारा काम अभी बाकी है, अभी बहुत घना बादल आ गया है, बारिश होने वाला है और जंगल का रास्ता है, बहुत अंधेरा भी होने वाला है, रात आने वाला है, तो आप हमारे जो बालक है कृष्ण को आप सुरक्षित रूप में लेके जाइए, घर में लेके उनको संभालिए। तब राधा रानी बोलती है ठीक है, और सारे सखियों के साथ कृष्ण को जो शिशु के रूप में, बच्चे के रूप में वो लेके जा रहे हैं। जैसे जंगल के बीच रास्ते में गए तो इतना भयंकर तूफान और आंधी का माहौल उत्पन्न हुआ, तो सब लोग घबरा गए और देख रहे थे उधर आकाश में बिजली चमका, लेकिन वो बिजली आकाश में नहीं चमक रहा था बल्कि उनके बाजू में चमक रहा था। क्या हुआ, उधर कटोरे में जो टोकरी में जो कृष्ण हैं वो अभी वो कृष्ण शिशु के रूप में नहीं रहे, अभी नवयौवनम च श्यामम त्रिभंग ललितम नवयौवनम च ये रूप धारण कर लिए, क्योंकि भगवान भविता में बताते हैं कि वो यथा वाम प्रपद्यन्ते ताम सतय बजाम्य हम। जब नंद महाराज यशोदा के सामने है तो शिशु के रूप में है, जब राधा रानी के सामने है तो वो शिशु के रूप में नहीं रह सकते, हाउ कैन ही बी, इट वाज इम्पॉसिबल। तो नवयौवनम च, तब सुंदर लीला होता है, उस समय लीला होते होते कृष्ण जो है वो गायब हो जाते हैं, और एक सखी आके राधा रानी को वर्णन करती है कि कृष्ण जो है वो सखी के साथ इस प्रकार कर रहे हैं, वो इस प्रकार कर रहे हैं। तो राधा रानी को बहुत दुख महसूस होता है, तो ये राधा रानी का दुख का वर्णन यही सखी जाके कृष्ण को करती है। जब कृष्ण को ये राधा रानी के दिल का व्यथा, हृदय का विरह का व्यथा सुनाती है, तो कृष्ण जो है वो भी बहुत पिघल जाते हैं और बोलते हैं कि राधा रानी को तुरंत बुलाओ, मैं इधर खड़ा हूँ, मेरा हृदय का जो वेतना उनको सुनाओ। तो कृष्ण का हृदय के वेतना को सुनाती है। तो ये जो दो कृष्ण और राधा रानी का जो हृदय में विरह की जो भावना है, ये गीत गोविंदम है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर जिस प्रकार की भावना उत्पन्न होती थी, उस प्रकार की भावना के अनुसार इन श्लोकों को उच्चारण किया जाता था। रूप स्वरूप दामोदर रामानंद राय का यही कार्य था। गंभीरा में क्या हो रहा था, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भी है और राधा रानी भी है। जब कृष्ण के हृदय में जो व्यथा उत्पन्न होती थी, हाँ, उस चीज को जब राधा रानी को सुनाते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का मूड को अपनाते थे। हाँ, जब गीत गोविंदम के कुछ श्लोक ऐसे वर्णन आता है, जब राधा रानी की दिल की व्यथा सुनाने पड़ता था, तब वो श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में उसको आस्वादन करते थे। तो ये है एक्सपर्टाइज ऑफ स्वरूप दामोदर गोस्वामी, स्वरूप दामोदर जो ललिता सखी है, जो हमने कल उसका उनका वर्णन सुना है। तो उसी चीज को और स्पष्ट रूप में सारे दुनिया में प्रचार कौन किया? जैसे ललिता सखी जो है बहुत गुस्से में, बहुत घमंडी है, इस प्रकार हमने कल सुना था। लेकिन और एक सखी है, विशाखा सखी। विशाखा सखी कौन है? हाँ, ये बहुत थोड़ा सा शांत है, संभालती है, और साथ साथ में राधा और कृष्ण का प्रेम का वर्णन करने में बहुत निपुण है। तो इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, ये विशाखा सखी, जिनका आविर्भाव भी आज का दिन मनाया जाता है, और उसी क्षण में जिस समय राधा रानी का आविर्भाव हुआ, उसी समय विशाखा सखी का वर्णन आविर्भाव हुआ, और उसी विशाखा का जो अवतार है, उनका जो रूप है, वह रामानंद राय। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी और भक्ति क्या है, कृष्ण प्रेम क्या है, वो वर्णन करने के लिए संसार में आए। लेकिन अगर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं वर्णन करते, कैसे वर्णन कर पाएंगे? इट्स इम्पॉसिबल। अपना प्रेम का जो कहानी है खुद बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है। ही कैन नॉट टेल, वो किसी और के द्वारा वर्णन कराना होता है। इसलिए रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया, सारंग भट्टाचार्य को उन्होंने बहुत वार्तालाप किया, उन्होंने बहुत सिद्धांत को प्रस्तुत किया, बड़ा बड़ा कार्य किया श्री चैतन्य महाप्रभु। जब रामानंद राय से मिले, तब बोले कि बस, पूछे कि अपना जीवन का लक्ष्य क्या है, शास्त्रों के ऊपर आधारित हो कि तुम मुझे सुनाओ। अस्तित्व में क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं सारे दुनिया को? राधा रानी कौन है, उनका महिमा क्या है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु में रामानंद राय के मुख से सुनाया। इसलिए सच में अगर राधाष्टमी का या राधा रानी का गुणगान गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार अगर किसी को करना है, उनको रामानंद राय का चर्चा पढ़ना होगा। ही हैज़ टू स्टडी दिस कन्वर्सेशन, श्री चैतन्य एंड रामानंद राय, जहाँ एक एक करके शुरुआत उन्होंने किया कि नहीं, हमको वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य करना होगा। नहीं नहीं, वो नहीं, और आगे कहो, वर्णाश्रम धर्म यद करो, जो दो करना है करो, लेकिन कृष्ण के लिए करो। नहीं, ये भी नहीं चलेगा, और आगे बढ़ो। नहीं, सर्वधर्मान प्रति, सारे धर्मों को त्याग करके कृष्ण का शरण लो। ये भी नहीं चलेगा। नहीं, जहां स्थित हो, नहीं, ज्ञाने प्रयासम, सॉरी, उसके पहले ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत में स्थित रहो, कुछ और कोई चिंता नहीं, बस भगवान का भजन करो। नहीं, ये भी नहीं चलेगा, और आगे कहो। देखिए, जहां स्थित हो उधर बैठ के आप बस भजन करो, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो, कृष्ण का गुणगान करो, राधा रानी का गुणगान करो। ये जो बात जैसे रामानंद राय ने बताया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को होश आया, हमारा ये ठीक है, और आगे कहो। बोला कि नो, बहुत प्रकार का भक्ति है, दो प्रकार का भक्ति है, एक है साधना, दूसरा है राग भक्ति है, जो लोभ से युक्त भक्ति है। अगर उस प्रकार का भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये लोभ होना पड़ेगा। जब तक ये लोभ नहीं है, तब तक ये कृष्ण भक्ति रसभावित भक्ति वो प्राप्त नहीं कर सकते। और आगे बढ़ाते हुए चलते, नहीं और आगे कहो, मतलब पांच प्रकार का रस है, दास्य शांत, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, उन सब का वर्णन किया। जब माधुर्य का वर्णन किया, तब बोले कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे वर्णन करो। तब रामानंद राय बोलते हैं कि मैं और आगे क्या वर्णन करूं, आपको कैसे वर्णन कर सकता हूं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय एक श्लोक को उच्चारण करते, असल में गौड़ीय वैष्णव ये आचार्य इस श्लोक को लेके सारे दुनिया को स्थापित करते हैं। क्या है वो श्लोक? किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नाय, ये कृष्ण तत्व वेत से गुरु है। जो कृष्ण का तत्व को जानता है वो गुरु है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक को उच्चारण कर रामानंद राय बताया कि तुम आगे बढ़ो, तो रामानंद राय ने बताया कि असलित में मैं जानता हूँ, मेरा जो जिह्वा है आपके जो हाथ में एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक वीणा जैसा है, आप बजा रहे हो, मेरा जिह्वा चल रहा है। आप अगर चाहते तो ठीक है, मैं चलता हूँ आगे। तो आगे चलते हुए कृष्ण का गुणों को वर्णन करते, उसके बाद राधा रानी का गुणों को वर्णन करते 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 अलग अलग शास्त्रों के श्लोकों का कोटेशन करते हुए इस बात तक आते हैं जहाँ गीत गोविंदम का बात आया है, जहाँ श्री कृष्ण प्रयास कर रहे राधा रानी को मनाने के लिए, नाना प्रकार की बातें कहते मनाने के लिए प्रयास करते, लेकिन राधा रानी को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राधा रानी के हृदय में विरह का अनुभव कैसे हो रहा है? एक तरीके से उनका हृदय में जलन हो रहा है दूसरी सखी के पास गए करके, लेकिन साथ साथ में उस जलन के वजह से उनको एक चिंता हो रही है कि इस जलन के वजह से मेरा हृदय इतना गर्मी हो रहा है, उसके अंदर आग इतना जल रहा है, और मेरे हृदय में भी तो कृष्ण है, और उनको क्या होगा। तो ये सब जितने प्रकार की जो राधा रानी के हृदय में भावनाएं उत्पन्न हो रही है, उसको इतना सुंदर रूप में जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, करते करते इस पॉइंट तक आते हैं जहां श्री कृष्ण सारा प्रयास कर करके थक गए और आखिरी में बोलते हैं कि देही पदपल्लम उधा उदरम। अभी श्रीमती राधारानी, अब एक ही रास्ता रहा, मेरा आखिरी पाशा है, आपका जो चरण है मेरे सर के ऊपर रखिए। जयदेव गोस्वामी लिखते, क्योंकि जयदेव गोस्वामी असलियत में वो कुछ सोच समझ के नहीं लिख रहे, वो जो लीला देख रहे उसी को लिख रहे। तो सोचे कि अरे ये कैसे हो सकता है, कृष्ण तो भगवान है, भगवान के चरण सर के ऊपर चरण रखना, अरे ये तो असंभव है। तो उन्होंने किताब बंद करके चले गए। तो कुछ समय के बाद जयदेव गोस्वामी आए, पद्मावती उनकी पत्नी को बोले कि आप बस अभी मुझे भोजन खिलाओ। तो भोजन वोजन खिलाया और उन्होंने कुछ लिखा और वापस चले गए। कुछ समय के बाद जयदेव गोस्वामी वापस आए, तो उस समय पद्मावती भोजन का ले रही थी। बोला अरे मेरे बिना तुम कैसे भोजन ले रही हो, सबसे पहले पति को खिलाना तुम्हारा धर्म होता है। तो बोला अरे अभी तो आप आए थे। तो जयदेव गोस्वामी बोलते मैं तो नहीं आया था, तुमने आप आके लिख के भी गए कुछ, देखिए। तो जाके देखते हैं कि भगवान उस जो अधूरा छोड़ा गया श्लोक है उसको लिख के जाते हैं। देही पदपल्लम उदारम, देही मतलब दे दो, आपके जो चरण कमल है उनको मेरे सर के ऊपर रखो, कृष्ण राधा रानी से कहते हैं। तो दिस कृष्णा, ये जो लीला है गौड़ीय वैष्णवों को बहुत आस्वादनीय है। देयर इज दिस अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द गौड़ीय वैष्णव अंडरस्टैंडिंग। कृष्ण क्यों रासलीला छोड़ के गए, और असली विरह जब कृष्ण लालायित होते हैं श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए, ये गौड़ीय वैष्णवों का समझ है। इतना हद तक कि कृष्ण के बाल लीलाओं में भी हम देखते हैं कि उनके दंद महाराज उनको कृष्ण को कृष्ण चाहते वो चाहते थे कि कृष्ण जो है वो मंत्रों का जप करे, उनका सुरक्षा प्राप्त हो, क्योंकि बहुत सारे असुर हो रहे असुर आ रहे। तो उन्होंने बोला कि एक ब्राह्मण को नियोजित किया, बोला कि उनको नारायण मंत्र उच्चारण करना सिखाओ। तो उन्होंने नारायण मंत्र कृष्ण को सिखाया था और बोले तो तुम जाओ ध्यान कक्ष में जाओ, उधर जाके नारायण का मंत्र उच्चारण करो, मैंने जो सिखाया हाँ, उधर जाके तुम अच्छी तरह से ध्यान करो, अच्छी तरह से नारायण मंत्र उच्चारण करो। कृष्ण बोलते थे हाँ हाँ मैं जाऊँगा, तो लेकिन तुमको आना नहीं चाहिए अंदर, क्योंकि ध्यान में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो बोला ब्राह्मण बाहर बैठा था और कृष्ण अंदर चले गए। जैसे अंदर गए तो बैठ के क्या कर रहे, नारायण को भूल जाओ, राधे 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 करके जप करने लगे। तो ये श्री कृष्ण राधे राधे करके जप करते हैं, तो हमको क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, क्योंकि हमारा केंद्र क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, राधा रानी का जो नजर उनको उनका कृपा प्राप्त करना। और राधा रानी का कृपा कैसे प्राप्त करेंगे, राधे राधे करने से प्राप्त नहीं होगा, कृष्ण कृष्ण करने से प्राप्त होगा। कृष्ण का नाम हम जप करते हैं, किसके लिए जप करते हैं, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ राधा रानी। क्योंकि हम जानते हैं राधा रानी कृष्ण से इतना प्रेम करती है, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है तुरंत राधा रानी का अटेंशन हम प्राप्त कर सकते हैं, उनका कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अगर राधा रानी का कृपा दृष्टि प्राप्त करना है तो कृष्ण का नाम लेना होगा, अगर कृष्ण का कृपा दृष्टि प्राप्त करना है तो राधा रानी का नाम लेना होगा। इसलिए हम दोनों का कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और आखिरी पॉइंट इसकी चर्चा में करते हुए, एक बार हम पढ़ रहे थे या ये सुना भी है कि पांचवें अध्याय में दसवें स्कंद के जब श्री कृष्ण का जन्म का वर्णन हुआ, जन्म होने के बाद प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक श्लोक भी आता है जहाँ जैसे कृष्ण जन्म हुए तो क्या हुआ, नंद महाराज का जो आंगन है वो लक्ष्मी जी का क्रीड़ा करने का स्थली हो गया है। तो उसके तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो एक लक्ष्मी की क्या कहना, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेवमानम, हजारों लाखों लक्ष्मियों का क्रीड़ा करने का आंगन हो गया है वो, नस्ते उन सारे लक्ष्मियों में असली लक्ष्मी कौन है, श्रीमती राधा रानी। यानी श्रीमती राधा रानी का क्रीड़ा करने का आंगन हो गया है, यानी श्रीमती राधा रानी कृष्ण जैसे आए श्रीमती राधा रानी का आने का जो माहौल तैयार हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, अगर सच में कोई श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया है तो आज मनाया है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म लेने का मतलब क्या है, राधा रानी आके अपना क्रीड़ा कर रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर सच में कोई जन्माष्टमी मनाया है तो किस रूप में मनाया है, और उस दिन अगर सोचा है तो राधा रानी आ रही है, अगर इस बात को सोचा है तो जन्माष्टमी मनाया है, नहीं तो नहीं मनाया है। This is the Gaudiya Vaishnava understanding. Prabhupada tatpari mein isko ekdam spasht roop mein to ullekhit nahi karte, lekin likhte hai ki Janmashtami heralds Radhashtami. Heralds matlab Janmashtami aate hi Radhashtami aa raha hai karke us din ghoshna kiya jata hai. To ye baat, this is the understanding of the Gaudiya Vaishnavas. To hum dekhte hai ki bahut सारे लीलाओं का वर्णन चर्चा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ग्रंथों में वृंदावन जाएंगे तो पूरा भरा हुआ है. ऐसे ऐसी लीलाओं का वर्णन है, कभी हर बार वृंदावन जाएंगे एक नया लीला का सुनने को मिलता है. कभी कभी ऐसा लीलाओं का कहीं लिखित रूप में भी नहीं है सुनने को मिलता है. तो इन सब चीज़ों को हमको आस्वादन करते हुए और साथ साथ में यदि न गौर ना हो तो तबे की हो तो राधारा महिमा प्रेम रसिमा जगत जाने के, ये बात को ध्यान में रखते हुए आज राधाष्टमी को मनाना होगा. और नित्य तरीके से अगर राधाष्टमी मनाना है तो हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र को रोज उच्चारण करना होगा, क्योंकि उसमें श्रीमती राधा रानी भी है. हम कृष्ण का नाम लेने के लिए लेते हैं, लेकिन कृष्ण का नाम राधा और कृष्ण दोनों साथ में लेते हैं. तो ये है श्रीमती राधा रानी का महिमा. और बहुत सारे अच्छी चीज़ें और आगे आएगा देवकीनंदन प्रभु जब आएंगे, तो तब तक हम कीर्तन और भजन में मग्न रहते हुए श्रीमती राधारानी से आज याचना करेंगे कि आज के श्लोक के अनुसार कि मेरे हृदय में बहुत सारे कलमश हैं, लेकिन आप ही एकमात्र सहारा हो जिनके द्वारा मेरे पास कृष्ण के प्रति संपर्क हो सकता है. दूसरा, मुझे कृपया करके अपराध से बचाइए. और जब मैं अपने गुरु को देखूँगा तो इस बात को मैं ध्यान में रखूं आज से कि जो आप मुझसे कराना चाहते हैं वही चीज़ गुरु मेरे से करा रहे हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे.